लपेटती, और इधर में जो मंथनी होती है उसमें भी रस्सी लपेटती, और दोनों हाथों से घर 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 कर रही, दधि का मंथन हो रहा है। काफी लंबा चौड़ा वो भैसल है, पात्र है, मथनी भी बड़ी है। यशोदा जी की कमर पतली सी, अद्भुत सुंदरी है, पसीने से पसीने की बुंदुएं मानो मोती जैसे नीचे लुढ़क रही हो, और तन्मय होकर के उस समय में दधि मंथन करती हुई गा रही है। क्या गा रही है? कृष्ण के लीला चरित्रों को ही गायन कर रही, बड़े मधुर स्वर से। उनका जो मथनी से जो दधि मंथन की आवाज आती है मानो मृदंग का पिछला भाग है, और उनकी चूड़ी जो है सोने की वो करताल जैसी मधुर झन झन रुन झुन आवाज कर रही, और तन्मय होकर के गा रही है। क्या? गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो, गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो। दुःखले संघटतण्डुलंश्च संघण्टयन्तो मुसलै प्रमुग्धा, गायन्ति गोप्य जनितो अनुराग, गोविन्द रामो गोविन्द रामो धर्माधवेति, गोविन्द रामो। ओखल में मूसल से कूट रही हैं। आजकल मैं नहीं जानता कि मूसल और ओखल किसे कहते हैं, आज की नई लड़कियां नहीं जानती हूँ, पुरानी जानती हो सकती हैं, भारत में ऐसा भी प्रचलन है। ओखल में कोई चीज चावल बनाने के लिए उसको कूटा जाता है, तो गोपियां क्या करती हैं? ओखल में कूट रही हैं और गायन क्या कर रही हैं? गोविंद रामो धर्माधवेती, कोई सवेरे उठ करके सुख पक्षी पिंजरे में रख है, बहुत सुंदर अलबेला सुख, और कहते हैं कि सुख पाठ करो। क्या पाठ करो? गोविंद दामो धर्माधवेती, गोविंद दामो धर्माधवेती, तन्मय होकर के कर रही हैं। पसीने के बुंदे परिश्रम से मोती की बिंदुओं की भांति नीचे टपक रही है, और भी उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। अंचल सिर से नीचे गिर जाता है, आंखों से आंसुओं की धारा प्रेम में बहने लगती है, और कृष्ण पलंग पर सोया हुआ उठता है। वो कौन पलंग पर सोया? पर ब्रह्मांड का जो पर ब्रह्म है, साक्षात भगवान, ईश्वरों का भी ईश्वर, देवताओं का भी ईश्वर, वो पलंग से उठ करके मैया 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 करने लगा। देखा जी, मैया तो है नहीं, नंग धड़ंग 3 वर्ष का शिशु, आंखों में जसोदा जी ने लंबे काजल कर दिए हैं, वो अपने हथेलियों से इस प्रकार जैसे साधारण मालन करते हैं वैसे करने लग गया। गंगा जमुना का पानी बहने लगा, अर्थात उसके आंखों से जो आंसू और काजल दोनों मिलकर के एकदम यहाँ पर जमुना जी गंगा जी बहने लगी। मैया बोल नहीं आ रही है, मैया कहाँ गई? थोड़ी देर में पेट के बल से बड़ी मुश्किल से पलंग से उतरा, और देखा कि मैया कहाँ? ओ बहुत दूर, वो दधि मंथन कर रही, जोर से चिल्लाऊं ऊं किया, किंतु मैया तो तन्मय होकर के गान कर रही है, उसी क्या लीला का गान कर रही है। फिर और चला थोड़ी दूर में, ऐसा मालूम होता है कि गिर जाएगा, जैसे कि घूम की खुमारी में, नित की खुमारी में बच्चे चलते हैं, अभी चलना भी ठीक से नहीं आया था। जो विश्व का चलाते हैं, भारण पोषण करते हैं, जो गोवर्धन जैसे पर्वत को उखाड़ करके अपनी कानी तंगुली पर रख सकते हैं, बड़े बड़े देवताओं का मान मर्दन कर देते हैं, कंस को एक क्षण में ही पछाड़ दिया, अरे पृथ्वी को धारण करके निसिंह उसमें बराह के रूप में, और ये हिरण्यकश्यप को मरा बतलाइए, और वो कृष्ण चलना नहीं जानते हैं। किसी प्रकार से चलते चलते जब निकट में आ गए तो और जोर से रोना आरंभ किया, किंतु मैया तन्मय होकर के दधि मंथन कर और निकट पहुंच करके मैया का सिर पकड़ लिया, केश, और दूसरे हाथ से दधि मंथनी को पकड़ लिया। जो सुधा जी ने देखा जी कौन आ गया, दधि चल कर मंथनी क्यों नहीं चल रही, देखा जी हमारा छोटा लाला कन्हैया या करके पकड़ लिया, प्रेम से पक गई, दधि मंथन छोड़ दिया और उस बच्चे को गोद में लेकर के बड़ा प्यार से अंचल से ढक दिया और अपना स्तन पिलाने लगी, दूध पिलाने लगी। कृष्ण बड़े ललक के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में इसका स्पादन करने लगे। थोड़ी देर में ही पाती में दूध रखा था आग पर, उसमें से दूध लुढ़कने लग गया, उफन करके गिरने लगा। मेरी भाषा ठीक समझ में आती है कि नहीं? उफनना, उफनना माने गर्म हो जाने के बाद में दूध उफन करके नीचे गिर जाता है। जसोदा जी ने दूर से देखा, जसोदा जी ने ये मन में सोचा कि ये दूध ये सोच रहा है कि यदि मैं कृष्ण की सेवा में नहीं लगा तो जीवित रहने से लाभ क्या। भक्त लोग ऐसा ही सोचते हैं, यह मनुष्य जीवन भगवान ने दिया, यदि भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में, भगवान की आराधना में ये जीवन नहीं लगा तो आग में जल करके मर जाना ही अच्छा है। इसलिए दूध सोच रहा है। यशोदा मैया के स्तन में इतना दूध है जो विश्व ब्रह्मांड को प्लावित कर देंगे, बाढ़ में डुबा देंगे, और इधर में कृष्ण का पेट इतना है जो पृथ्वी कोटि कोटि पृथ्वी उसमें समा जाए, एक एक लोम को उसमें तो उनका पता नहीं चले, इतना बड़ा पेट। तो कृष्ण का कभी पेट नहीं भरेगा और उनका दूध कभी भी कम नहीं होगा, ये तो जीवन भर पीते रहेंगे तो हमको कब ये पिएंगे, ऐसा सोच करके दूध अगली में जलने लगा। हमारे नरोत्तम ठाकुर जी ने एक गान गाया, यदि मनुष्य जन्म मिल करके हमारा जीवन बेकार गया, हमने कृष्ण का भजन नहीं किया, विषयों में अपने जीवन को लगा दिया, क्यों मैं जीवित रहा हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी मर जाना चाहिए, किंतु बड़ी मुश्किल है, आज मृत्यु भी हमें नहीं आ रही। यदि भगवत भजन हुआ तो जीवन सार्थक है, और नहीं तो केवल पाप ही कमाएंगे, अच्छा तो करेंगे नहीं कर्म, दूसरों को ठगेंगे, बेईमानी करेंगे, किसी की निंदा चुगली करेंगे, इससे जीवन और बेकार हो जाए। कुछ लोग अपने को सामाजिक समझते हैं कि मैंने समाज का ये काम किया, मैंने 1000 अस्पताल बनाया, हमने 100 स्कूल और कॉलेज बनाया। हमारे हिंदू या कोई हैं इंडिया के, उन्होंने बड़े बड़े अस्पताल बनाए, ये बड़ी समाज सेवा है। क्या समाज सेवा है? कोई डकैत लाखों आदमियों का कत्ल करके उसी में चिकित्सा करा करके वो ठीक होकर का फिर कत्ल करता है, इसका पाप कौन भोगेगा? आज स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं हो करके कैसी कैसी शिक्षाएं होती हैं, एटम बम बनाना सीखता है, लोगों को मारना, आजकल चोरियां क्यों बढ़ रही, स्कूल कॉलेज में ही वो सीखते हैं ये सब। यहाँ पर सच्ची शिक्षा नहीं, भगवत शिक्षा नहीं होगी, आत्मा की शिक्षा नहीं, वहां पर ये सब बाध्य है। इसलिए जगत में आज इतनी समस्याएं हो रही हैं, इतने जेल हो रहे हैं, कहाँ कोई सुधार हो रहा है? जेलों से सुधार नहीं होगा। ये सुधार होगा कैसे? यदि समझे कोई ये भगवान है, हम बुरा कर्म करेंगे तो भगवान हमें पीस करके सत्तु बना डालेगा, ऐसा यदि डर होगा तब तो वो इन क्राइमों से बचेगा, अन्यथा नहीं, वो तो जेल जाएगा, फिर आएगा, फिर वैसा ही करेगा, फिर जेल जाएगा, वहाँ पर बिना परिश्रम के ही भोजन मिलता है, आजकल तो वहाँ पर फैन भी लग रहे हैं, आजकल उनकी खाने की सुविधा दी जा रही है, तो वो बाहर में क्यों रहेंगे, बाहर में तो काम करना होगा। इसलिए जबकि न्याय होता है उस समय देखता है कि अब मैं बरी हो जाऊंगा, एक चप्पल उठा करके और जज को मारता है, हैं? हमको मारा, अच्छा जाओ तुमको और 5 वर्ष का जेल, बहुत अच्छा भाई, इसी के लिए तो वो किया, इससे चरित्र नहीं सुधरेगा। इसलिए इतने जेल हो करके भी, इतने कानून हो करके भी ये मोरालिटी और ये सत्यता, प्रेम, یہ سب نہیں آتا. اسکول کالج جگت میں ایسے نہیں بنے ہیں. یہ تو ہماری گرو پرمپرا کے سنت لوگ ہیں جو ابھی بھی کچھ جگت میں ستتا ہے, کچھ موریلٹی ہے, کچھ اچھی باتیں ابھی ہیں. ان کی شکشا اسکول کالج میں نہیں دی جاتی. ہم لوگ بنا پیسے کے ہی اپنا آچرن کرتے ہیں, دوسروں کو شکشا دیتے ہیں, اس لیے ہماری باتوں کو لوگ سنتے ہیں. نہیں تو اب تک جگت کا دھنس ہو جاتا. اس لیے یہاں پر میں کہہ رہا تھا کہ ہاں وہ دودھ جل رہا تھا, میں بچوں گا نہیں, اب اپنا پران چھوڑ دوں گا آگ میں جل کر. یسودا جی نے کہا جی نہیں 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 ٹھہرو. کرشن کو کہا جی تم بیٹھ, میں جاتی ہوں اس دودھ کی رکشا کروں گا, پہلے اسی دودھ کو تم کو مکھن ملائی اتیادی بنا کر کے کھلاؤں گی, اس کو سیوا میں لگاؤں گی. یہ کام گرو کا ہے, یسودا جی گرو ہے. گرو جی اپنی بھگوان کی سیوا بھی چھوڑ کر کے, بھجن چھوڑ کر کے دوسروں کے اپکار کے لیے بیچ میں گھومتے ہیں, نانا طرح کے کشٹ پاتے ہیں. سوامی جی ہمارے جو بھکتی ویدانت سوامی جی ہیں تھے, ایسی بھکتی ویدانت پربھوپاد جن کو آپ لوگ جانتے ہیں, 76 برس کے عمر میں, آج کل ہماری عمر 77 برس کی ہونے جا رہی ہے, اسی عمر میں آج سے کتنے برس پہلے 1968 یا کس میں 65 میں ہوائی جہاز سے نہیں مالواہی جہاز سے بھارت یہاں پر آئے امریکہ میں, اور کتنے کشٹ سے پرچار کیا, ہمیں بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. آج یدی وہ نہیں ہوتے تو آپ کے یہاں یا بیچ میں آج جو ہری نام ہو رہا ہے ہرے کرشن یہ بھی نہیں ہوتا. جگت کا کتنا کلیان کیا ہے ہم کلپنا نہیں کر سکتے, کنتو بڑے دکھ اور پریتاپ کا وشے ہے آج ان کے شیشے لوگ اس ستیہ سے کچھ بھرشٹ ہو رہے ہیں. اس کو کہنے میں ہمیں تنک بھی سنکوچ نہیں ہے, اس کا پالن نہیں کر رہے, سادھو سنتوں کا آدر نہیں کرتے, اور لوگوں کو چھل بھی کرنے میں باز نہیں آتے. ہم ان کے بہت نکٹ کے رہنے والے ہیں سوامی جی کے, 1946 سے میں جانتا ہوں, ان کی بہت سیوا کی ہے ہم نے, ان کے لیے ساری پستکیں اور جتنی وگرہ جو مورتیاں ہیں پرتشٹھا کے لیے ہم نے بھیجی, ہم نے ان کے لیے کرتال مردنگ بھیجا, ہم نے ان کی ایسی سیوا کی ہے جس میں اس کو ان کا جنم نہیں تھا. 1946 سے 54, 55, 56 میں ان کو سنیاس دلایا ہم نے, ہمارا نام بھی بھکتی ویدانت نارائن ہے, ان سے پہلے ہمارا سنیاس ہوا تھا, تب ہم نے ان کو سنیاس اپنے گرو جی سے دلوایا, ان کو بہت سیوا کی, ابھی تک ہم ان کو اپنا شکشا گرو مانتے ہیں کیونکہ میری عمر ان سے بہت کم تھی. تو یہاں پر یہ میں بتلانے جا رہا ہوں, اس پرسنگ کو چھوڑیے, اس میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں. اپرسنگ ہے کہ وہ کرشن کو رکھ کر کے اور دودھ کو رکشا کرنے کے لیے جا رہے ہیں, وہاں پر ہوا کیا, کرشن نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میا کا تن پکڑ لیا خوب زور سے, جیسے بندری کا بچہ اپنی ماں کو پکڑ لیتا ہے, اپنے پیروں سے بھی پکڑ لیا اور مکھ سے ان کا تن خوب زور سے ایسے پکڑ لیا, من چھوڑیں گے نہیں. یشودا جی نے بیٹھ یہاں اور لے کر کے چھوڑا کر کے بیٹھا دیا. پر برہم جو ایشوروں کے ایشور ہیں, آج ان کی ایک بھی شکتی نہیں چلی, یشودا مین جی کے ایک ڈپٹ سے انہوں نے لے کر کے بیٹھا دیا. اسہائے کرشن ان کے سامنے ہو گئے. پوتنا 10,000 ہاتھیوں کا بل رکھنے والی تھی, وہ کرشن کے سے اپنے سن کو نہیں چھڑا سکی, نہیں چھوڑا, انت میں مر گئی. آج یشودا جی نے کیا کیا, پتر باپ تلے سے پریم سے ایسا کیا, جو دھکا دیا اور بیٹھ بیٹھ گیا. کرشن اسہائے ہو کر کے بیٹھ گیا, کروت سے ان کا ادھر پھڑکنے لگا, ہوٹ پھڑکنے لگے, میا نے ہم کو ابھی پورا دودھ نہیں پلایا اور چلی گئی, دودھ پیارا ہے کہ میں پیارا ہوں, ہمارے لیے تو دودھ ہونا چاہیے, آج ہمیں چھوڑ کر کے اور وہ دودھ کی رکشا کرنے. نہیں, بھکتوں کا یہی نیم ہوتا ہے, بھگوان سے بھی بھکت لوگ ادھک پیارے ہوتے ہیں. بھگوان کی کوئی چیز ہو وہ بھگوان سے بھی بھکتوں کو ادھک پیاری ہوتی ہے, اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اس لیے یشودا جی کرشن کو رکھ دیا اور چلی گئی, دودھ پہ پانی کے چھیٹے دیے, اور جب وہ ٹھیک ہو گیا تو لوٹ کر کے جب آئی تو دیکھا جی یہ کہاں گیا, نٹکھٹ. نٹکھٹ گیا کہاں, دیکھا جو کلش سے جس میں دہی منتھن کر رہی تھی, اس میں سے ساری دہی نکل کر کے پھیل رہی ہے چاروں طرف. गया कहाँ? देखा ये बंदर का बंधु, बंदर जैसा चंचल, ये देखो तो इसको एक पत्थर लेकर, जिसे पहले लोढ़ा कहते थे, उसमें मसाला इत्यादि पीसते थे, उसको लेकर के छोटा सा और नीचे की तरफ में ठोकर से मारा और उसमें गोल छेद हो गया, उसमें से सब निकल, जब वो निकल रहा था तो कृष्ण ऐसे देख रहे हैं, वाह ये तो बहुत अच्छा निकल रहा है। इसके बाद में थोड़ी देर में अपनी भगवत्ता भी भूल गए और यशोदा मैया का डर, मैया आएगी तो मुझे मारेगी, इसलिए उसी के ऊपर में पैर रखते हुए और घर के अंदर में घुस गए। घर से बाहर जाना चाहते थे, इतने में देखा जो ऊपर में मक्खन के वो हड़िया लटक रही, बस उखल औंधी हुई थी, उसके ऊपर में चढ़ करके मक्खन लेकर के कुछ खा रहे हैं, कुछ बंदरों को खिला रहे हैं, कुछ कौओं को खिला रहे हैं। बंदरों को किस लिए खिला रहे? अरे जब मैं राम के रूप में आया तो ये बंदर लोगों ने ही हमारी सहायता की, सीता जी को पता लगाया, मार खाई, कितने मरे, मैंने उनका कुछ दिया नहीं, इसमें खूब मक्खन खिलाऊं, इसलिए जो कुछ खा रहे हैं और कुछ उनको बांट रहे हैं। और कौओं को किस लिए दे रहे हैं? काग भुसुंडी के वंश हैं, काग भुसुंडी जी भगवान के बड़े भक्त हैं, उनको भी दे रहे हैं। यशोदा मैया ने देखा जी ये घर में घुसा, देखा जी क्या कर रहा, उन्होंने एक छोटा सा बेंच उठाया और उठा करके कपाट के अंदर में धीरे धीरे बिल्ली के पैर जैसे, बिल्ली का पैर जैसा जानते हैं ना, सूखे हुए पत्ते पर भी बिल्ली चलेगी तो वो चरमर नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं होगी। यशोदा मैया बिल्ली की भांति धीरे धीरे पैर को रख करके बड़ी जल्दी से झट कवाट की ओट में जा करके खड़ी हो गई, देख रही हैं ये भग न जाए। इतने में जल्दी से लठिया लेकर के उसके पीछे से पकड़ने के लिए ऐसे ही आई, इतने में बंदर वहां से देखे, बंदर इनको देख करके भगे और कौए भी इधर उधर भगे। कृष्ण ने सोचा जी ये बंदर और कौए किस लिए भाग रहे हैं, तो जो पीछे देखा अरे ये तो मैया पकड़ ली, बस झट उसमें से कूद करके भागे। उधर भी एक दरवाजा था वो राजमार्ग पर, वहां से लौट करके भागे, अरे देखो ब्रह्मा ये कैसे लीला कर रहा। यशोदा जी भी मुक्तों के मुक्त हैं, सर्वज्ञ होने पर भी भगवान ये कृष्ण हमारा बेटा है ये नहीं समझती, नहीं तो इतना प्यार कैसे होता है। और कृष्ण भी भगवत्ता को भूल गए, सोच रहे कि मैं इनका लाला हूँ छोटा, मैया आकर के मारेगी, भगे। यशोदा जी दौड़ी बेंत लेते हुए हाथ में, तू लाला भाग करके कहाँ जाएगा, आज हमारे गांव वाले जितने हैं गोचारण में चले गए हैं, कोई डर की बात नहीं, और दीपावली का दिन है, मैंने सब नौकरों को भी छुट्टी दे दी है, कृष्ण सोच रहे हैं छुट्टी दे दी है, इसलिए आज कोई वहाँ पर रहेगा नहीं। जो यशोदा मैया कहिए आज कोई गांव में नहीं है, हम डरेंगे नहीं, लज्जा नहीं करेंगे, बस सर पर दौड़ें। कृष्ण दौड़ रहे हैं, जो यशोदा मैया यदि उनसे अधिक नहीं दौड़ेंगी तो उनको पकड़ नहीं सकेंगी, किंतु कृष्ण के बराबर दौड़ने वाला विश्व में कोई है? बड़े बड़े जोगी लोग मन के द्वारा भी कृष्ण के चरणों को पकड़ नहीं पाते, लाखों वर्ष तपस्या करके ब्रह्मा सुखदेव जी और बड़े बड़े सनत सनंदन सनातन इत्यादि शंकर जी भी जिनके चरण कमलों को छू नहीं पाते, आज यशोदा जी छोटी सी गोपी, वो भी स्थूल शरीर, जरा मोटा शरीर है, कमर बड़ी पतली और साड़ी जैसे आप लोग पहनी है ऐसे साड़ी पहनी हुई, पैरों तक लटकती है, किंतु दौड़ी आई। कृष्ण जितने दौड़ रहे हैं उनसे अधिक दौड़ने से उनको पकड़ेंगे नहीं तो नहीं पार कर सकती, माने क्या भगवान लोगों पर जो कृपा कर रहा है उससे अधिक यदि भक्तों में कृष्ण के प्रति अनुराग हो, भक्तों के प्रति कृष्ण का अनुराग है और कृष्ण का अनुराग भक्तों के प्रति है, यदि कृष्ण के अनुराग से भक्तों का अनुराग अधिक हुआ तो वो पकड़ में आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे, इसलिए यशोदा जी दौड़ रही हैं, इनका वात्सल्य कृष्ण पर अधिक है, इसलिए पीछे से दौड़ी, उनका केश का बंधन खुल गया, फूल एक एक करके गिरने लगे, माने फूल कह रहे हैं कि मैया तू ये मत करो, चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं तुम्हारे साथ में, आज कृष्ण को जरूर पकड़ करके दंड देना है, इसलिए मानो फूल उनके पीछे पीछे गिर रहे हैं और वो चली रही। उन्होंने अपना बेच उठा, अरे लो मारा। जब ही ऐसे किया तो कृष्ण का, अरे मैया मुझे मत मार। वो जरा दूर खड़े हो गए, क्यों नहीं मारूं, मैंने क्या दोष किया कि तुम मुझे मार रही। अरे तुमने वो दधी का भांड क्यों तोड़ दिया, कलश क्यों तोड़ दिया। मैया तो मैंने तो नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा तो किसने तोड़ा। अरे मैया तू जो दौड़ करके आ रही थी, तुम्हारे पैर में जो ये सोने का जो कंगन था, यहाँ क्या कहते हैं कड़ूला, ये सोने का कोई पायजेब नहीं, वो पूरा सोने का ही होता है, ठोस होता है, तो उससे लग गया और उसे ये टूट गया। तो वो हंसने लगी, अरे चोर धोरत। कहे मैया हमारे वंश में तो चोर नहीं, ये तुम्हारे वंश में कोई चोर होगा, हमारे बाबा के वंश में कोई चोर नहीं। तो वो हंसने लगी, फिर दौड़ी पकड़ने फिर भागा। काल जवन जिनको नहीं पकड़ सका, पकड़ सका काल जवन, जरासंध जिनका पीछा करते करते भी नहीं पकड़ सका, जिनकी परछाई भी नहीं छू सका, और कृष्ण से अधिक तीव्र गति से दौड़ करके और झट उनको पकड़ लिया। अब तो कृष्ण रोने लगे, पकड़ करके घर में ले आए, अभी तुम्हें मारूंगी। कहे मैया मुझे मत मार। कहते हैं ये तो बड़ा ढीठ हो गया है, तुम अभी से चोरी सीख रहा है और अपने घर में भी चोरी करने लग गया और हमसे झूठ बोलता है, चट ठहरो। तो कृष्ण जब खूब रोने लग गए, नमामि ईश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुल भ्राजमान जसोदा भियोलु खला धावमानम परामिष्टमस्यं सतोदुत। नमामि ईश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुल भ्राज रुदंतं मुहुर्नेत्र युगम मृयंतं करांभोजयुग्मेन शातंकनेत्रं मुहुर्श्वासकंप त्रिरेखांककंठ स्थितग्रहीवदामोदरं भक्ति। नमामि ईश्वरं सचिदानंदरूपं लसत्कुंडलं गोकुलभ्राज। कृष्ण रुदंतं मुहुर्नेत्र, बड़ी बड़ी लंबी सांसें लेकर के रो रहे हैं। वहां पर त्रिवली पड़ी हुई है, तीन रेखाएं जैसे शंख में रेखाएं होती हैं, पेट में भी तीन रेखाएं हैं, यह सौंदर्य, और गाल में थोड़ा सा ऐसा पड़ा। अत्यंत अद्भुत सुंदर कृष्ण, रोना भी बड़ा मधुर, चलना भी मधुर, बोलना मधुर, हंसना मधुर, कृष्ण का सभी कुछ मधुर। आज कृष्ण रो रहे हैं, ये भी अच्छा लगता है। हमारे ये स्तुति करने वाले कहते हैं, कृष्ण तुम्हारा रोना ही अच्छा लगता है, ये रोनी हुई मूर्ति हमारे अंदर में, हमारे हृदय में ये सदा के लिए बस जाए। हंसना हुआ तो है ही है, किंतु रोने में भी बड़े खूबसूरत हैं कृष्ण। रो रहे हैं, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, मैया मुझे मत मार। यशोदा जी अपने दाहिना हाथ से पकड़ी हुई और लक्ष्या बाएं हाथ से पकड़ करके, उनका दाहिना हाथ और बाएं हाथ से, कहते मारूं। जब रोने लगते हैं तो छोड़ देते हैं, कहते अच्छा तो ठीक है तुझे बांध करके रखूंगी। ओ दोखल में बांधा, बांधने के लिए चेष्टा, सखी जरा रस्सी लाना तो लइयो। तो सखियां हंसने लगी, क्यों बांध रही है, अरे बहुत उम्र होने पर एक बेटा मिला, इतना सुंदर, इतना सुकुमार, इतना सुंदर, और उसको ये मार रही है थोड़ी सी दूध के लिए, मक्खन के लिए, ये उचित नहीं। अरे छोड़ दे सखी, इसे मत मार, नहीं आज इसे शिक्षा देंगी, हमारे गर्भ से उत्पन्न हुआ रहता, हमारे साथ में ऐसी चल करता है, हम इसे शिक्षा देंगी, भविष्य के लिए ना कर सके। ब्रह्म को शिक्षा देने के लिए ये गोपी आई, यही प्रेम है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने रस्सियां मंगाई, एक रस्सी ली और उस रस्सी से कृष्ण को बांधना चाहा, किंतु वो रस्सी इतनी लंबी होने पर भी एक बार भी कृष्ण की कमर में पूरी नहीं हुई। कृष्ण की कमर कितनी, बार आठ अंगुल, बस आठ अंगुल की इतनी सी, इसी में आ जाए, और रस्सी कितनी बड़ी गाय को बांधने का, एक बार भी पूरा नहीं हुआ। गांठ लगे कैसे, उन्होंने एक और रस्सी मंगाई, तीसरी रसाई, चौथी, पांचवी, छठी, वो अपने घर की सारी जोड़ती चली गई और एक बार भी पूरा नहीं हुआ। सखियों ने कहा, इसके ललाट में बंधन ब्रह्मा ने नहीं लिखा, तू इसको क्या बांधेगी। सबर ऐसे 10 जन्मों तक बांधने पर नहीं बांध सकी। यशोदा जी, मैं तो बांधूंगी, आज कल परसों वर्षों में बांध करके ही पानी पीऊंगी। उन्होंने संकल्प कर लिया। हजारों रस्सियां आई, मीलों रस्सियां लंबी हो गई। अद्भुत व्यापार, वो पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कृष्ण सत्य संकल्प है, सत्य संकल्प, जो सोचते हैं वही होता है। उन्होंने कहा, जे आज मैया हमें बांध देगी तो बच्चों के साथ में खेल कैसे होगी। गोपियां जो हमारे लिए अपने घरों में हैं, वो सोच रहे हैं जी हमारे घर में मक्खन चुराएगा तो हम उसे पकड़ करके खेलेंगी, ये कैसे होगा। आज गैया दूध नहीं देंगी, जब तक कृष्ण को नहीं देखती तब तक वो दूध ही नहीं देती है। उसके बछड़े हजार आए, पैरों से मार करके भगा देती है। इसलिए आज यशोदा मैया मुझे नहीं बांधती। इतने में जोग मैया, उनकी शक्ति आकर के ऐसा किया, रस्सी लंबी बढ़ती बढ़ती मीलों लंबी हो गई। कृष्ण की कमर वही 8 अंगुल चौड़ी रही, किंतु वो बंध नहीं सकी, एक बार भी पूरा बंधन नहीं। पसीने के बूंदे टपकने लगे। यशोदा जी का मैया का मुख उदास हो गया। सोचने लगी, मेरा बेटे को मैं बांध नहीं सकती, सखियां क्या कहेंगी, अपने बेटे को बांध नहीं सकी। तब श्री वरुण उनका मुख लाल हो गया। उन्होंने अपने गृह के जो नारायण जो थे, जिनकी पूजा करती थी शालोग्राम की, हे ठाकुर जी, मैं अपने बेटे को बांध नहीं सकती, बड़ी लज्जा की बात हो। इतने में कृष्ण ने देखा, मैया के मुख में पसीने की बूंदे टपक रही हैं। उसको देख करके कृपया शीश बंधन, मैया का परिश्रम देख करके कृष्ण को दया आ गई, इसको कष्ट हो रहा है। इसलिए झट थोड़े ही में उनके केस बांधने के लिए रेशम की डोरी थी, बस उसी से ही बंध गए और उसी को लेकर के उदुखल के भी, उदुखल माने ओखल, ओखल के पीछे से बांध दिया, जे कृष्ण उसको पकड़ करके खोल न सके। भगवान को पाने के लिए 2 चीजें हैं, या तो कठोर भजन साधन किया जाए, कठोर आप लाख वर्ष तक चेष्टा करेंगे साधन के द्वारा, ब्रज का प्रेम जैसे यशोदा जी को था ये नहीं हो सकता, ये तो कृपा से होता है, या तो भक्तों की कृपा हो या भगवान की कृपा हो, किंतु भगवान की तो कृपा सब पर है। फिर एक तो होना चाहिए साधन भजन, और आपके परिश्रम को देख करके साधन भजन को भगवान को दया आ जाए। एकादशी के दिन किसी भक्त ने निर्जला उपवास किया, कहा ओ ये भक्त हमारे लिए निर्जला उपवास कर रहा है, द्रवित हो जाए, भगवान उसके प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। इसे यशोदा मैया का परिश्रम देखते ही कृष्ण पिघल गए। साधक भक्तों का साधक साधन और तब भगवान की कृपा, दोनों मिल करके भगवान मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। लाख साधन करेंगे, भगवान की कृपा नहीं होने से आप उनको नहीं पा सकते, इसलिए दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। इस चीज को और समझिए, रामानुजाचार्य के संप्रदाय में 2 बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान की कृपा होगी तब हम भगवान को भजन कर लेंगे, सही जाने यही देह जनाई, भगवान की कृपा नहीं होते लाख साधन करने से भगवान नहीं मिलेंगे, इसलिए साधन करने की जरूरत है, भगवान की कृपा हो जाएगी बस मिल जाएंगे। और दूसरे कहते हैं कि नहीं, भगवान को साधन करना चाहिए, जब तक ये साधन और भगवान की कृपा नहीं मिल जाती तब तक वो व्यक्ति भगवान को नहीं पा सकता, इसलिए दोनों चीज की जरूरत है। हमारा साधन भी जरूरत है, गुरु वैष्णव जैसा कहते हैं, और साथ साथ में भगवान की कृपा अपने आप हो जाएगी। बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ करके, बच्चा उसका मेव मेव करता है, वो बच्चे को पकड़ कर लेकर के इधर से उधर जा करके रख देती है, बच्चा कुछ नहीं करता, अपने नहीं चलता, खाना भी अपने नहीं खाएगा, वो कहीं चला करके खिला देगी। और बंदर क्या करता है, उसकी मैया कुछ नहीं करेगी, जहीं कहीं चलना होगा तो बच्चा आकर के उसको पकड़ लेगा ऊपर से या नीचे से, और ये कूद जाएगी उस पेड़ से उस पेड़ पर, यदि वो बच्चा गिर गया तो उस बच्चे को जीवन भर नहीं छुएगी। तो जैसे बिल्ली का बेटा अपना कुछ काम नहीं करता, मैया उसको ले जाते हैं उधर तक, ये भगवान की कृपा होगी तब हम भजन करेंगे, ऐसा मत करो। और केवल बंदर जैसा साथ